नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। संजीव जी, आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी ओर से भी सभी सुनने वालों को नमस्कार।
सबसे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशिया कप क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच मैच जारी। हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा आईसीसी टी20 रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप आज से नई दिल्ली में शुरू, मुख्य स्पर्धाएं कल से। और अंडर 17 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में कल भारत का सामना नेपाल से। एशिया कप टी20 क्रिकेट का सुपर फोर मुकाबला आज भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के 72 रन बना लिए हैं। इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत और बांग्लादेश दोनों ही सुपर फोर चरण में अपना पहला मैच जीत चुकी है। भारत ने टूर्नामेंट में दूसरी बार पाकिस्तान को शिकस्त दी, जबकि बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया। अगर भारत आज के मुकाबले में जीत दर्ज करता है तो बेहतर रन रेट के कारण भारत की फाइनल में जगह पक्की हो जाएगी। आज अब तक का मैच तो हमने देखा कि भारत का अच्छा ही चल रहा है फिलहाल।
पहले जी बिल्कुल, देखिए जो शुरुआत हुई तो ऐसा लगा पहले 3 ओवर में कि उन्होंने बांध रखा है, लेकिन अभिषेक शर्मा जहां हो वहां बांधना बहुत आसान नहीं होता है। 3 ओवर में 17 रन थे मेरे ख्याल है, और अब 6 ओवर हुए, पावर प्ले खत्म हुआ तो 72 है। आप सोच लीजिए कि 3 ओवर में कितने रन बने। तो इस तरह से जो ताबड़तोड़ शुरुआत हुई है और जो कॉन्फिडेंस दिखा बांग्लादेश का कि वो टॉस जीत के पहले भारत को बैटिंग दे रहे हैं, ये जानते हुए कि यहाँ टॉप बल्लेबाज हैं, देखना है कि कहाँ तक भारत पहुँचता है और फिर वो बांग्लादेश कैसे उस टारगेट तक पहुँचने की कोशिश करता है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से भारत की लय है, फॉर्म है, उसको देखते हुए अगर भारत जीत जाता है, जिसकी ज्यादा संभावना है, तो भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी इसके बाद जो मैच बचेंगे 2 होंगे। बांग्लादेश की टीम अभी तक दूसरे नंबर पर थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने जो मैच जीता उसके बाद पाकिस्तान की टीम दूसरे नंबर पर आ गई। और एक और बात है कि बांग्लादेश को अभी कल ही दूसरा मैच खेलना है
जी,
मतलब इसके बाद जो पाकिस्तान से उसका वो इम्पोर्टेंट होगा कि उसमें कौन सी टीम जीतती है वो भारत से फाइनल में खेलेगी, क्योंकि श्रीलंका की अब उम्मीदें कम रह गई हैं।
जी, अभी जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से बांग्लादेश ने मैच जीते हैं पिछले और भारत ने, या अगला कौन सा मैच होने वाला है, तो अगर हम पूरे आंकड़े को देखें तो क्या इस मैच को एक तरफा बोल सकते हैं भारत के लिए?
देखिए अभी तो मैच की शुरुआत हुई है, लेकिन भारत ने जो भी मैच जीता है वो लगभग डोमिनेंस के साथ जीता है, दबदबे के साथ जीता है, और इसमें बड़ा योगदान अभिषेक शर्मा का रहा है और स्पिनर्स का भी रहा है बॉलिंग में। तो अभिषेक शर्मा देखिए अभी 19 गेंद में 46 रन बनाकर खेल रहे हैं, हालांकि शुभमन गिल आउट हो गए हैं, और लेकिन अभी बैटिंग लाइनअप आप समझ सकते हैं इतने अच्छे अच्छे बैटर्स हैं भारत की ओर कि उम्मीद करें कि भारत ने जिस तरह से अभी रन रेट है 12 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं 200 प्लस का टारगेट जाता दिख रहा है, जो कि इतना आसान नहीं होगा इस पिच पर उसको चेज करना बाद में बैटिंग करते हुए।
जी, कल के सुपर फोर मुकाबले की बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 134 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे पाकिस्तान ने 18 ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया। इस हार के साथ श्रीलंका की फाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पुरुषों की टी20 रैंकिंग जारी कर दी है, जहां ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपने अपने वर्ग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
ये एशिया कप में अपनी चमक बिखेरने वाले तिलक वर्मा T20 फॉर्मेट में बल्लेबाजों की रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। तिलक ने एक स्थान की छलांग लगाते हुए इंग्लैंड के जॉस बटलर को पछाड़ दिया है। वहीं भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शीर्ष पायदान बरकरार रखा। गेंदबाजों की लिस्ट में वरुण चक्रवर्ती भी नंबर वन स्थान पर काबिज हैं। हार्दिक पांड्या गेंदबाजों की रैंकिंग में 6 स्थान ऊपर चढ़कर 60वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि T20 फॉर्मेट के ऑलराउंडर की रैंकिंग में उन्होंने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने अब तक 4 पारियों में 43.25 की औसत के साथ 173 रन जोड़े हैं, जिसमें पाकिस्तान के विरुद्ध 74 रन की पारी भी शामिल है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
ऐसे हम फील्ड में देख ही रहे हैं कि हमारे बल्लेबाज हो या फिर गेंदबाज हो या ऑलराउंडर हो, सब बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिसका रिजल्ट हमारी ICC की रैंकिंग में भी देखी जा रही है। क्या कहेंगे, किस तरह से भारतीय टीम डोमिनेट कर रही है, बिकॉज हर फील्ड में वो शीर्ष पर अपना स्थान बरकरार रखे हुए।
देखिए, बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंडर्स की जो रैंकिंग है T20 इंटरनेशनल में, तीनों पर भारतीय टॉप पर है।
जी,
सिर्फ बैटिंग की बात कर ले तो अभिषेक शर्मा 907 उनके रेटिंग अंक हैं, और ये बहुत रेयर होता है कि आप क्रिकेट में 900 प्लस करें। अभी तक जितने भी बड़े जो प्लेयर हुए हैं उनमें से बहुत कम प्लेयर होते हैं जिनकी रेटिंग 900 प्लस चली जाए। तो ये आप समझ सकते हैं कि अभिषेक शर्मा का करियर बहुत लंबा नहीं है, अभी एक साल कुछ महीने हुए होंगे जब वो भारतीय टीम में आए, डेब्यू किया है। यही नहीं, अगर आप टॉप 10 में देखें तो उसके बाद तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर हैं, सूर्य कुमार यादव छठे नंबर पर हैं। तो टॉप 10 में अगर भारत के बैटिंग में तीन बेस्ट बैटर्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि भारत का कितना दबदबा है। और ओवरऑल जब खेल पर दबदबा होता है, T20 इंटरनेशनल में हालिया जो रिपोर्ट रिजल्ट देखें तो भारत ने लगातार जीत दर्ज की है, वर्ल्ड चैंपियन है भारत, और जिस तरह से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है वो रैंकिंग में हम उसकी झलक देख सकते हैं।
जी बिल्कुल, वैभव सूर्यवंशी के शानदार अर्धशतक और कप्तान आयुष महात्रे की ऑफ स्पिन गेंदबाजी से झटके 3 विकेट की बदौलत भारत की अंडर 19 टीम ने भी आज ब्रिस्बेन में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को 51 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। करीब करीब श्रीलंका का अंतिम मैच शुक्रवार को खेला जाएगा, जो कह सकते हैं कि महज औपचारिकता है क्योंकि सीरीज ऑलरेडी भारत के नाम हो चुकी है। जिस तरीके से ये युवा खिलाड़ी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत में क्रिकेट का फ्यूचर आप किस तरीके से देखते हैं?
एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अभी जो अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन हैं वो भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं इनफैक्ट। तो उसमें और भी एक प्लेयर है भारतीय, तो भारत सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशी टीमों में, जहां ऑस्ट्रेलिया टॉप टीम है दुनिया की, जैसे काफी समय तो उनका दबदबा रहा है हर एक फॉर्मेट में, और वहां से भी उनकी जूनियर टीम में दो दो भारतीय खेल रहे हैं। अब लौटकर आते हैं भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर, तो वैभव सूर्यवंशी के नाम आज एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ। उन्होंने उनके नाम 10 उन्होंने अंडर 19 मैच खेले हैं भारत की ओर से, और 40 से अधिक सिक्स हो गए हैं, 41 सिक्स मेरे ख्याल से जो रिकॉर्ड में देख रहा था, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले उन्मुख चंद जो थे भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान, उनके नाम शायद 38 सिक्स का रिकॉर्ड था, जिसको आज उन्होंने तोड़ दिया है।
जी।
तो वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 14 प्लस के हैं, मतलब 15 के आसपास उनकी उम्र है, और वो जिस तरह से खेल रहे हैं तो ये दर्शाता है कि अभिषेक शर्मा हो, शुभमन गिल हो, तिलक वर्मा हो, ये जो प्लेयर है अभी लंबी कतार है, अभी बहुत, वो इतना अच्छा खेल रहे हैं फिर भी उनको ए टीम में, भारतीय जो टॉप टीम है उसमें जगह नहीं मिल रही है, अंडर 19 ही खेल रहे हैं। तो इसके बाद भी हमारा जो 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 कहते हैं हमारी बेंच स्ट्रेंथ, तो बहुत ही सशक्त है।
बिल्कुल, नई दिल्ली में आज से जूनियर निशानेबाजी विश्व कप का आगाज हो गया है, हालांकि मुख्य स्पर्धाएं कल से शुरू होंगी, जो 2 अक्टूबर तक डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की जाएंगी। पूरी प्रतियोगिता कैसी होगी जानने के लिए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
ओलंपियन शॉटगन निशानेबाज रायजा ढिल्लो और एशियाई जूनियर ट्रैप चैंपियन सबीरा हरिस प्रतियोगिता में 69 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। अंडर 21 आयु वर्ग के निशानेबाज राइफल, पिस्टल और शॉटगन में 18 देशों के 200 से अधिक निशानेबाजों के खिलाफ अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता में अमरीका, इटली, चेक गणराज्य, ईरान, क्रोएशिया, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमारात, स्लोवाकिया, कतर, स्पेन और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी तथा 40 व्यक्तिगत तटस्थ एथलीट भाग ले रहे हैं। ये निशानेबाज 15 ओलंपिक और 2 गैर ओलंपिक स्पर्धाओं में 51 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। टूर्नामेंट कल पुरुषों और महिलाओं की 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धाओं के साथ शुरू होगा। इसमें दोनों ही गैर ओलंपिक स्पर्धाएं हैं। इसमें भारत दोनों वर्गों में 5-5 निशानेबाजों को उतारेगा। ये जूनियर शूटिंग विश्व कप का 11वां संस्करण है और पहली बार भारत में आयोजित हो रहा है। वहीं ये इस साल का दूसरा और अंतिम जूनियर विश्व कप भी है, जहां भारतीय निशानेबाजों का लक्ष्य घरेलू सरजमी पर शीर्ष स्थान हासिल करना होगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
इससे पहले इस साल का जो पहला जूनियर शूटिंग विश्व कप था, जर्मनी में आयोजित किया गया था, उसमें भी भारत 3 स्वर्ण सहित 11 पदकों के साथ शीर्ष पर था और इस बार तो अपनी ही धरती होगी। क्या उम्मीदें हैं भारतीय खिलाड़ियों से, भारतीय निशानेबाजों से?
देखिए, सबसे बड़ा दल भारत का उतरेगा यहाँ पर
जी,
और भारत ने जो पिछली स्पर्धा थी वहां भी भारतीय टीम का दबदबा रहा था और जो 180 के आसपास जो इस बार उतर रहे हैं पूरी दुनिया से जो खिलाड़ी हैं, उसमें से सबसे बड़ा दल भारत का है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जर्मनी में भारत ने प्रदर्शन किया था, उसमें मेडल्स में और इजाफा होगा, क्योंकि आप जब अपनी जगह पे खेलते हैं, अपने रेंज पर जब शूट करते हैं, जो जिससे आप बहुत बखूबी परिचित होते हैं, आपका होम सपोर्ट होता है, तो ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि जो जर्मनी में जो भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया था, उससे कुछ ज्यादा मेडल यहाँ पर लेके आएंगे।
बिल्कुल। अब बात कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की, जहां आज एचएस प्रणॉय का अभियान निराशाजनक रूप से समाप्त हुआ जब वे चोट के कारण रिटायर हर्ट हो गए। वहीं आयुष शेट्टी और किरण जॉर्ज को भी हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का अभियान समाप्त हो गया, क्योंकि अन्य खिलाड़ियों को भी हार ही मिली है। अगर हम पूरे साल को देखें तो पूरे सत्र में भारत के लिए बैडमिंटन से कोई अच्छी खबर नहीं आई है।
देखिए, एक जो सबसे अच्छी खबर मैं कह सकता हूँ वो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने, बेशक उन्होंने खिताब नहीं जीते, लेकिन दो फाइनल में खेलना और टॉप टूर्नामेंट्स के फाइनल में खेलना, और उसके अलावा ज्यादातर टूर्नामेंट्स में वो लय में दिखे हैं। अब वो फाइनल का जो जिंक्स है वो उसको आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आगे जो प्रतियोगिताएं कुछ हैं उसमें वो जरूर करेंगे। जहां तक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात है, वहां पर बेशक निराशा हुई है पुरुष और महिला वर्ग दोनों में। मुझे यही लग रहा है कि जो जैसे आयुष शेट्टी जूनियर खिलाड़ी, ये सब दो तीन जो उभर कर आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लेंगे, एक आध साल बाद उनका एक्सपीरियंस होगा। आयुष शेट्टी ने एक अमेरिकी वहां पे ओपन जीता था, लेकिन वो थोड़ा कम जो कहते हैं कि रैंक वाला टूर्नामेंट है, 300 BWF जो रैंकिंग होती है उसके हिसाब से वो थोड़ा छोटा था, लेकिन इंटरनेशनल खिताब तो था। तो आने वाले समय में कुछ जूनियर खिलाड़ी हैं, जब और एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो हो सकता है अगले सीजन से हम बहुत सारे भारतीय खिलाड़ियों को फाइनल में खेलते या खिताब जीतते देखेंगे।
बिल्कुल। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप के ग्रुप चरण में अब तक अजय रहे भारत की कल असली परीक्षा होगी, जब टीम कोलंबो के रेसकोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में नेपाल से भिड़ेगी। भारत अब तक सबसे प्रभावशाली टीम रही है, जहां उसने मालदीव को 6-0 से, भूटान को 1-0 और पाकिस्तान को 3-2 से हराने के बाद 9 अंक के साथ शीर्ष पर अपना स्थान बरकरार रखा है। और खेल मंत्रालय ने 2026 एशियाई खेलों में चयन के लिए कड़े मानदंडों की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि पदक जीतने के वास्तविक दावेदार खिलाड़ियों को ही मौका मिलेगा और सरकारी खर्चे पर नहीं जाने के बावजूद अतिरिक्त कोचों और सहयोगी स्टाफ को जाने की अनुमति नहीं होगी। एशियाई स्तर पर व्यक्तिगत रैंकिंग में शीर्ष 6 और टीम खेलों में शीर्ष 8 में रहने वाले खिलाड़ियों को ही राष्ट्रीय महासंघ नामांकित कर सकेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। संजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
नमस्कार।
और इसी के साथ मुझे और पूरे स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।